श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 25 श्लोक संख्या 29 5 सितंबर 2015 स्पीकर कमलोचन प्रभु जन्माष्टमी फेस्टिवल।
हरे कृष्ण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को चर्चा करना और उसका महत्व है। वैसे तो भक्तों के लिए प्रत्येक दिन जन्माष्टमी है। एक जगह ऐसा वर्णन किया गया है, जहां जहां जिस समय में हमारे हृदय में भक्ति के भाव जागृत होते हैं वही जन्माष्टमी है। भगवान और भगवान के संबंधित कोई भी वस्तु में भेद नहीं है। खास करके भगवान के संबंध जोड़ने वाला, भगवान को अतिप्रिय, कृष्ण को वश में भी करने वाला एक ऐसा एक चीज है, उसको भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति में भगवान में कोई अंतर नहीं है। जिस दिन हमारे हृदय में भक्ति जागृत होता है वो जन्माष्टमी मानी जाती है। वैसे जन्माष्टमी जिस दिन भगवान का प्राकट्य होता है वो जन्माष्टमी कहें, तो भगवान और भगवान के संबंधित वस्तुओं में अगर कोई अंतर नहीं है तो भगवान के अति संबंध में अगर कुछ है वस्तु, अगर कुछ है तो और कोई चीज है तो है भक्ति है। तो जिस दिन हमारा हृदय में भक्ति जागृत होता है, भक्ति के नवा नवा धामन्य उदितम रंतुम अस्ति, अलग अलग प्रकार के हृदय में भक्ति की भावना जागृत होती है, वही जन्माष्टमी है। तो इसलिए भक्त केवल जन्माष्टमी एक दिन नहीं मनाते बल्कि प्रति रोज मनाते हैं, प्रतिक्षण मनाते हैं। वैसे देखा जाए जन्माष्टमी जो है अनेकों लोग आएंगे भगवान का दर्शन करेंगे वैसा है। खास करके आप देखिए इस्कॉन के मंदिर में तो बहुत भीड़ लगता है। वो साधारण सा लोगों के लिए आज के दिन जन्माष्टमी, लेकिन भक्तों के लिए प्रत्येक दिन जन्माष्टमी है। इतना भी साधारण लोगों के लिए जन्माष्टमी का विशेषता इसलिए क्योंकि उनके हृदय में भक्ति जागृत हो। माधव तिथि भक्ति जननी, जन्माष्टमी एकादशी इत्यादि जो है माधव तिथि कहा जाता है, जिसके जिस दिन भक्ति का जागृत हृदय में होता है। इसलिए वास्तविक जन्माष्टमी है वो हृदय में भक्ति को जागृत करना, या भक्ति पहले से ही करते आ रहे हैं कि हृदय में अलग अलग प्रकार की भगवान के प्रति भावनाओं को जागृत करना, उसको तीव्र करना, इसको जन्माष्टमी के रूप में हमको जानना चाहिए। तो जन्माष्टमी हम कभी भी मना सकते हैं। जब हम भक्ति के अनुभूतियों अनुभवों को भक्ति के द्वारा हम अलग प्रकार की भावनाओं को हृदय के हृदय में अनुभव करेंगे, कृष्ण के प्रति भावनाओं के जो तरंग है लहर है जैसे हमारे हृदय में जागृत होता है तो ही जन्माष्टमी है। तो खास करके जन्माष्टमी, वैसे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का अप्रकट होने के बाद, यानी अपने स्वधाम में चले गए, तो स्वधाम में जाने के बाद श्री कृष्ण वापस आए। किस रूप में वापस आए? श्रीमद् भागवतम के रूप में आए। यानी दूसरे शब्दों में जन्माष्टमी का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। अगर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने के बाद किस रूप में प्रकट हुए? भागवत के रूप में प्रकट हुए। जन्माष्टमी हो और भागवत ना चर्चा किया जाए वो जन्माष्टमी नहीं बोला जा सकता है, और भागवत की चर्चा हो लेकिन उस दिन जन्माष्टमी नहीं है लेकिन फिर भी जन्माष्टमी है वो दिन। इसलिए वैसे तो आज जन्माष्टमी है लेकिन साथ साथ में भागवत का जो श्रवण है अति महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं लेकिन भागवत की चर्चा नहीं है तो जन्माष्टमी नहीं हुआ। लेकिन जन्माष्टमी नहीं है उस दिन, कोई और तिथि है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है, लेकिन भागवत की चर्चा है तो वो जन्माष्टमी है, क्योंकि श्री कृष्ण परिवर्तिता। श्रीमद् भागवत क्या है? वापस आए हुए कृष्ण है। परिवर्तिता मतलब वापस आए हुए कृष्ण है। इसलिए भागवतम का प्राकट्य है जन्माष्टमी है, क्योंकि भागवत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वापस आए हुए कृष्ण है श्रीमद् भागवत। तो वैसे तो हमारी संस्था में रोज भागवत की चर्चा होती है, जिसके द्वारा प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा एक जन्माष्टमी हर रोज मनाने का मौका दे दिया है। लेकिन फिर भी आज के दिन जन्माष्टमी है, उस दिन भागवत की चर्चा की और विशेषता है, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा एक विशेष टॉपिक आज लिया जाए। भगवान की एक बहुत सुंदर लीला के बाद हुआ एक प्रार्थना है, उसको लिया जाए। वो है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रकाश हम प्रदान करने के लिए प्रयास करेंगे। भागवतम के 10वां स्कंद का 14वां स्कंद 14वां अध्याय में हमको ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं प्राप्त होती है। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं की विशेषता थोड़ा सा चर्चा करके इन प्रार्थनाओं के कुछ श्लोकों को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे देखा जाए भागवत की शुरुआत में ब्रह्मा जी का उल्लेखन हुआ है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्मा जी को आदिकवि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सारा वेदों का ज्ञान प्रदान किया, सबसे पहला ब्राह्मण है, वैदिक ज्ञान के द्वारा गायत्री मंत्र के द्वारा उन्होंने भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। सबसे पहला जो चार भागवत के जो श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, चतुश्लोकी भागवत है, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में प्राप्त होते हैं, चार श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया। ये सब कुछ बताने के बाद भी हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी विमोहित हुए। वैदिक ज्ञान पूरा प्राप्त करने के बाद भी भगवान ब्रह्मा जी क्यों विमोहित हुए, उसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य बताया जा रहा है। ब्रह्मा जी या ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा सारा जगत को एक संदेश देना चाहते हैं, एक ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं जो वेद गुह्यम, तो वेदों के लिए भी गुह्य है। वेद भी इसको प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहते हैं, वैसा ज्ञान को सारा जगत में स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये ब्रह्म विमोहन लीला को रचा। क्योंकि अगर किसी के हृदय में पूरा वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो गया है, वो वापस क्यों मोहित होगा? लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मोहित किया, क्यों किया? उसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि सारे जगत को बताने के लिए कि मैं आपको ऐसा ज्ञान देना चाहता हूं ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा, जो वेदों में भी प्राप्त नहीं होता है, वेदों में भी अप्रत्यक्ष रूप में है। वेदों को बार बार वो उच्चारण करने के बाद भी, पूरा जानने के बाद भी, जिस चीज को जान नहीं सकता, वो ज्ञान मैं ये ब्रह्म विमोहन लीला में मैं प्रदान करना चाहता हूं। ये सबसे विशेषता वाली बात है। वो क्या है? वो ज्ञान क्या है? वो चीज जो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान सारा जगत को स्थापना करना चाहते, देना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी के द्वारा ही देना चाहते हैं। देखिए ज्ञान जो है दो प्रकार, एक है कुछ चीजें हैं बता के, देखो मैं बता रहा हूं सुनो, ये तो डायरेक्ट हुआ। एक इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ज्ञान मतलब क्या है कि आप, मैं बताऊंगा नहीं तो आप कुछ गलत करो, उसके द्वारा एक अनुभूति होती है, सही क्या मालूम पड़ता है। इसलिए मान लो कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके बाद कुछ बुरा अनुभूति होता है, उससे सही क्या समझ जाता है, यह अनुभवात्मक ज्ञान है। तो ब्रह्मा जी विमोहित होए, तो विमोह के, ब्रह्मा जी के विमोह के द्वारा उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे अर्जुन भी मोहित हो गए, उसके द्वारा भगवत गीता निकला, ब्रह्मा जी का विमोहन के द्वारा भी एक ज्ञान निकला जो ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में निहित करते हैं। ये भी बड़ा अद्भुत चीज है, जो वेदों के भी प्राप्त नहीं है वैसा ज्ञान ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में प्राप्त होता है। क्या है वो? सरल भाषा में कहा जाए, भगवान श्री कृष्ण की मधुरता जो है वो उनके ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है। माधुर्य ज्ञान है, मधुरिमा जो है कृष्ण का, द स्वीटनेस ऑफ कृष्ण इज सुपीरियर टू द ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण। क्योंकि सारा जगत जानता है भगवान ऐश्वर्यवान है, लेकिन भगवान की मधुरिमा भले ही लोग जानते, वो सोचते कि भगवान की मधुरिमा जो है वो केवल एक अंग मात्र है, या उनकी ऐश्वर्य जो है उसके उसके तुलना में उनकी मधुरिमा गौण है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी अपने विमोहन के द्वारा ये सारा जगत को बताया कि भगवान की जो मधुरिमा है उनके ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है। वैसे देखिए अनेकों अनेकों प्रकार के अनर्थ हमारे हृदय में, हम काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य अनेकों अनेकों बारे की कहते हैं, लेकिन एक ऐसा अनर्थ है बहुत तीव्र अनर्थ माना जाता है, खास करके गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, गौड़ी वैष्णव धारा के अनुसार इस अनर्थ को सबसे महान अनर्थ माना गया है। क्या है वो? भगवान की ऐश्वर्य को उनकी मधुरिमा से श्रेष्ठ समझना। तो सारा जगत इसी में डूबा हुआ, भगवान के ऐश्वर्य में। उनकी मधुरिमा को चर्चा करते हैं तो बोलते हैं ठीक है, तो उनके एक छोटा सा अंग मात्र है। नहीं, भगवान की माधुरीमय लीला जो है, मधुरमय वपु है, वो जो है वो उनकी उनकी ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है। इस बात को स्थापना करने वाला ये एक लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला। तो इस ब्रह्म विमोहन लीला का विशेषता, एक महान विशेषता ये वाला है। दूसरा विशेषता क्या है ब्रह्म विमोहन लीला का? ब्रह्म विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी जब प्रार्थना किए, उन प्रार्थनाओं में एक श्लोक प्राप्त होता है, ज्ञाने प्रयास उदपास्यन्वन्ते वा जीवन्ति सन्मुखकृतिं भवदीयवार्थां स्थाने स्थितं सुदिगतां तनुवां मनोभिर्ये प्रायसो जितोऽभिजितः तैस्त्रिलोक्याम्। तो ये श्लोक का विशेषता क्या है? राय रामानंद और राज चैतन्य महाप्रभु जी से संवाद हुआ कोवूर राजमंड्री के पास, गोदावरी के तट पे। उसमें चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को उद्धृत करते हुए, साध्य का वर्णन करते हुए, एक एक श्लोक को शास्त्रों से उद्धृत करो जिसके द्वारा वो पता लगे कि ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, गोल ऑफ लाइफ। तब रामानंद ने अनेकों चीजों को कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वर्णाश्रम धर्म विष्णु को बीच में रखते हैं, विष्णु आराध्यते पंत नान्य तत्तोष कारणम। तो चैतन्य महाप्रभु का ये हो बाह्य आह को आर, ये बाह्य है, आगे और कहो। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे उन्होंने कहा, रामानंद ने कहा ठीक है। तो उन्होंने यद करो सी दशनाशी जोशी ददाशी तपस्वी को तत्कृष्वाम अर्पण में श्लोक उच्चारण के भगवत गीता का, जो भी करोगे वो मुझे अर्पण करते हुए करो, कृष्ण को अर्पण करते हुए, कृष्णार्पण यानी कर्मार्पण का श्लोक को वर्णन किया। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये हो बाह्य आगे को हो आर, एक ही आगे और कहते रहो। तब रामानंद राय ने कहा ठीक है, अभी ज्ञान मिश्र भक्ति का वर्णन करता हूं। ज्ञान मिश्र भक्ति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती ने कांक्षति, बाद में उन्हें वर्णन किया कि त्याग का वर्णन किया। तीसरा श्लोक में उन्होंने वर्णन सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरण व्रज, ये श्लोक को वर्णन किया। तो महाप्रभु ने कहा कि ये हो बाह्य आगे को हो आर। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु जैसे उन्होंने कहा इस प्रकार की, रामानंद राय ने कहा ठीक है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती ने कांक्षति समम सर्वे भूतेषु मद्भक्ति मलते पराम, समम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति मलते पराम, जो सबके साथ समदृष्टिकोण रखता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न रहता है, उस व्यक्ति को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान मिश्र भक्ति का वर्णन किया। तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह हो बाह्य आगे कहो और आगे कहते जाओ। तब रामानंद राय ने श्लोक को उच्चारण किया, ज्ञाने प्रयास मदपास्य नमन्ति वा, शुद्ध भक्ति को वर्णन करने वाला श्लोक है। सारे ज्ञान के प्रयास को त्याग करो, ज्ञाने प्रयास मदपास्य नमन्ति वा जीवन्ति सन्मुखकृतं भवदीय वार्थां, जियो कैसे जियो, सन्मुखकृतं भवदीय वार्थां, संतों की मुख से उत्पन्न हुआ जो कृष्ण कथा है उसको श्रवण करते हुए पूरा जीवन निकालो। ज्ञाने प्रयास मदपास्य नमन्ति वा जीवन्ति सन्मुखकृतं भवदीय वार्थां, ये अगर इस प्रकार करोगे तो क्या होगा, स्थाने स्थितम शुचिगताम तनुवांग विना, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, स्थाने स्थितम जिस स्थान में स्थित हो भवदीय वार्थाम, आप श्रवण कीर्तन करते हुए जीवन निकालोगे। अजितोपि जितः, भगवान अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, वैसा कृष्ण को भी जीत सकते हो। ये शुद्ध भक्ति के अंदर उतनी क्षमता है कि कृष्ण को भी वश में करने वाली है शुद्ध भक्ति, श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को वश में करने की शक्ति इस भक्ति में है। वैसा भक्ति करो जैसे रामानंद ने इस बात को कहा, चैतन्य महाप्रभु का यह होय, ये ठीक है। तो ये जो श्लोक है ब्रह्मा जी ने कहा, तो ब्रह्म विमोहन लीला का ये विशेषता है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना की विशेषता है। जिस श्लोक को महाप्रभु ने ये होय कहा, यानी जीवन की सर्वोच्च सिद्धि के रूप में स्वीकार किया, उस श्लोक, वो बीज वाला जो श्लोक है, वो श्लोक ब्रह्मा जी की प्रार्थना में प्राप्त होता है। ये हमारा दूसरा विशेषता है ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला का, या ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं का। सबसे पहला विशेषता ये है कि भगवान की मधुरिमा को माधुरीमय स्वरूप को, उनके ऐश्वर्यमय स्वरूप से श्रेष्ठ मानना है, जो वेदों के लिए भी अगोचर है, वैसा ज्ञान को भगवान ब्रह्मा जी प्रकाशित करते हैं। दूसरा, जिस चीज को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, ये शुद्ध भक्ति है, जो भक्ति जिसके द्वारा भगवान को भी वश में किया जा सकता है, वैसा भक्ति को उद्धृत करने वाला ये प्रार्थनाएं हैं। तीसरा विशेषता क्या है, देखिए बद्ध जी का स्वभाव अपराध करना, सब अपराध से भरा हुआ, क्षण क्षण अपराध चलता रहता है। जैसे कोई बच्चा जो है वो चलना सीखता है, चलते चलते खड़े हो दो कदम तक गिर जाता है, दो कदम फिर उड़ता है, फिर दो कदम चलता है, फिर गिर जाता है। हर व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति है, हम सबकी ऐसी परिस्थिति है, ये कोई नई बात नहीं है। एवरी स्टेप, ऐसा नहीं कि अपराध किया था या कर दूंगा, नहीं, हर कदम में अपराध होता है, हर कदम में, शारीरिक तरीके से, वाचिक तरीके से, मानसिक तरीके से अपराध होता है। और ब्रह्मा जी इनकी प्रार्थना, उनमें अपराध की क्षमा याचना करते हैं। देखिए, जब अपना अपराध की क्षमा याचना जब करते हैं, पश्चात पछताव जब व्यक्ति करता है अपराधों की, तब कृष्ण का ये विशेषता क्या है, उनके हृदय में प्रेम भर देते हैं। प्रेम भरने का सबसे सरल, प्रेम अपने हृदय में प्रेम को, कृष्ण प्रेम को भरने का ये सरल रास्ता है पछताना। ये नहीं कि मैंने अपराध किया था उसके लिए भी पछता रहा हूं, नहीं, मैं कदम कदम पे अपराध कर रहा हूं कृष्ण, क्योंकि ये बात स्मरण करने मात्र से हृदय में नम्रता प्रकट होती है। और जैसे हृदय में दीनता प्रकट हुई, प्रेम निश्चित रूप में है। ब्रह्मा जी के प्रार्थना में हमको प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी का क्या पोस्ट है, देखिए उनसे बढ़कर कोई नहीं है, पूरा सृष्टि किया उन्होंने। जब वो पछताते हैं, मैंने क्या गलती किया, हे कृष्ण माफ कर दो, मुझे क्यों माफ करना चाहिए, मैं कितना दीन हूं, मैं कितना पतित हूं। जब ब्रह्मा जी कहते हैं, समझना चाहिए कि हम कौन है ब्रह्मा जी के सामने। वेदों के प्रत्येक श्लोक को जानने वाले ब्रह्मा जी, सृष्टि को पूरा निर्माण किया, हमारे जैसे एक दो घर नहीं बनाया, नहीं तो एक मंदिर बना दिया, लेकिन ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि किया है। वैसे ब्रह्मा जी जब पछताते हैं, तो उधर श्री विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के शुरुआत में कहते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में वैसे पछताव प्रकट हुआ, कृष्ण ने उनके हृदय में प्रेम भर दिया, उस प्रेम वश ब्रह्मा जी इन प्रार्थनाओं को उच्चारण कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है, लेकिन उसके लिए पछताव के बिना, दीनता को अनुभव किए बिना कोई इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। जो दीनता को अनुभव करता है, प्रेम दूर नहीं है, वो भरा हुआ है, इसलिए दीनता है तो मतलब प्रेम है। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें, या ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं का एक इंट्रोडक्शन समझ लीजिएगा। तो आप सब जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला, ऐसा कौन भक्त है जो ब्रह्म विमोहन लीला को नहीं जानता है, लीला तो सब जानते हैं, लेकिन भागवत में लीलाएं महत्वपूर्ण नहीं है। लीलाओं के अंत में जो प्रार्थनाएं होती है वो महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि इन प्रार्थनाओं में भक्तों ने अपनी शरणागति और भक्ति की भावनाओं को छुपा के रखा है। जैसे शुरुआत में प्रवचन की शुरुआत में बात में कहा कि भक्ति भगवान से अभिन्न है, जैसे भक्ति की भावनाएं हृदय में जागृत होती है, वो जन्माष्टमी है, वो भावना, भक्ति की भावना कहाँ छुपा हुआ है, भक्तों की प्रार्थनाओं में छुपा हुआ है। तो ये भागवत में अनेकों जो प्रार्थना होती है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मान लो कोई आपने किसी ने एक लेख लिखा, लेख के जो अंत वाला जो भाग होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो लेख में जितना भी चीजें हैं अंत में सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वैसे ही प्रत्येक लीला के अंत में हम प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का लीला बहुत अच्छा लीला है, बहुत सुंदर लीला है, प्रहलाद का लीला बहुत सुंदर है, लेकिन जब प्रार्थनाओं का सेक्शन आता है बोलते हैं तो प्रार्थना एक ही बात, चलो अगले लीला में जाते हैं। ये हमारा स्वभाव है, भागवत जब भागवत पढ़ते रहते हैं हमारा स्वभाव क्या रहता है, लीला पढ़ लिया बहुत मजा आया, लीला में स्टोरी बहुत अच्छा लगा, बाद में जब प्रार्थना है इतना लंबा छोड़ा प्रार्थना, एक ही बात बार बार सब कहते हैं, छोड़ो इसको अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका मतलब है लीला का आस्वादन नहीं हुआ। लीला का आस्वादन मतलब प्रार्थनाओं में मन लगना। जितने ही भागवत में प्रार्थना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रार्थना भागवत का सार माना जाता है, उस लीला का सार माना जाता है, क्योंकि भले ही ऐसा लगता है कि सारे प्रार्थना एक जैसा है, लेकिन एक जैसा नहीं है। क्योंकि हरेक भक्त का जो भक्ति है वो भगवान के प्रति जो भावना है वो अलग अलग प्रकार की, उसके अंदर वैरायटी है, उसको पहचानना ये लीला के अंदर प्रवेश करने की ये विशेषता है। लीला के अंदर कोई प्रवेश किया इसका मतलब ये है कि वो प्रार्थनाओं को आस्वादन कर रहा है। देखिए हमारी वाक्चातुरी के द्वारा लीलाओं को अच्छी तरीके से वर्णन कर सकते हैं, लेकिन बट लीला का आस्वादन जो है वो तभी संभव है जब इन प्रार्थनाओं को हम उसको पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे या उसको उसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो वास्तविक जन्माष्टमी तभी होगा जब इन प्रार्थनाओं को हम रोज प्राय पढ़ते रहेंगे। तो ब्रह्मा जी का ब्रह्म विमोहन लीला, वैसे पूरा भागवत में दो ब्रह्म विमोहन लीला है। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की चर्चा में ब्रह्म विमोहन लीला आता है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को दोनों ब्रह्म विमोहन लीला सुनाया। उसके पीछे कारण यह है कि सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु समझाना चाहते हैं कि भगवान की ऐश्वर्य देखो इतना महान है, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान की ऐश्वर्यों को वर्णन करते हुए ब्रह्म विमोहन लीला को कोट करके तुरंत भगवान की मधुरीलाओं को वर्णन करना शुरू करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को। दो अध्याय, डॉपुलेंस ऑफ कृष्णा एंड स्वीटनेस ऑफ कृष्णा। तो ये जो भगवान की ऐश्वर्य को माधुरी के साथ जोड़ने वाला अगर कोई लीला अगर कुछ है तो ब्रह्म विमोहन लीला है, एक ब्रिज है। क्योंकि ब्रह्मा जी ऐश्वर्य में स्थित है, भगवान का ऐश्वर्य जगत है। जगत क्या है, व्हाट इज दिस ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा, भगवान का ऑपुलेंस है। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को इस जगत की माप को वर्णन करते कितना बड़ा है, कितना विस्तार है, यानी भगवान का यह ऐश्वर्य है। तो भगवान के ऐश्वर्य, कृष्ण के ऐश्वर्य संपत्ति के अधिष्ठात देव है ब्रह्मा जी, और वो अभी भगवान की मधुरिमा में डूबे हुए हैं। ये प्रार्थनाओं की विशेषता है। तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगा ये छोटा बालक क्या कर रहा है, मैंने सुना है भगवान है, कृष्ण है, भगवान है, लेकिन कर क्या रहा है। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे कृष्ण ने क्या किया, अभी अगासुर का वध हुआ। अगासुर का वध होने के बाद सभी भक्त सभी बाल बालों को लेके कृष्ण ने कहा ये देखो बहुत रमणीय स्थान है, यमुना बह रही है, इधर रेती बहुत सॉफ्ट है, उधर बैठेंगे छाया भी है, तुरंत हमको पानी ढूंढने के लिए इधर जाने की जरूरत नहीं है, पानी पी सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, छाया भी है, सॉफ्ट सैंड है, और गाय बछड़ों को कुछ चराना है तो जाके चर लेगी, ये अच्छी तरह बैठेगी। कृष्ण स्वयं स्थान को छुना, ब्रह्म विमोहन लीला या जो जो ग्वाल बालों के साथ जो खाना खाने की जो लीला है वो स्थान कृष्ण स्वयं छुना। सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी जो टिफिन बॉक्स ले आए थे वो निकाले, कुछ ग्वाल बालों में पत्ते के ऊपर रखा, कोई पत्थर के ऊपर रखा, कोई हाथ में रखा, वो खाने लगे। ये सब दृश्य भगवान जी ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि बच्चा भगवान कैसे हो सकता है। वेदों में तो वर्णन है कि भगवान ये है वो है महान है, पुरुषम महान्तम आदित्य वर्णम तमस परस्तात सहसा शीर्षा पुरुषा, हर एक उन्हें को श्लोकों के द्वारा यही बच्चा भगवान के, वो भी ऐसा कैसा है कि ये देखो क्यों क्या रहा है। ब्रह्मा ने देखा ये एक बच्चा जो है एक समोसा खा रहा था, खाते खाते तो देखा क्या मजा आ रहा है बहुत अच्छा, तुरंत और एक बच्चे ने क्या किया, तुम अकेले ये खाते हो, उसका मुख से निकाला और खुद खाने लगा, खुद खाने लगा, बहुत अच्छा बना है, बहुत मजा आ रहा है। और एक ग्वाल बाल ने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, उसके मुख से निकाला, खुद खा रहे हो, कृष्ण को खिलाए बिना इसको निकाल के कृष्ण के मुंह में डाला। अभी ब्रह्मा जी इस बात को देख रहे कि यज्ञ भुक् ईश्वरहा, यज्ञ में भगवान शुद्ध चीजों को स्वीकार करते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ शुद्ध चीजों को, घी में बनाया हुआ चीजों को स्वीकार करते हैं, इधर झूठा खा रहे, वो भी पहला झूठा नहीं डबल ट्रिपल झूठा, इसके मुख से निकल के इसके मुख से निकल के, ये कैसे हो सकता। अभी मैं टेस्ट करूंगा कि ये सच में भगवान है कि नहीं। यानी ब्रह्मा के मन में बात आई जो मधुरिमा जो है बाल बालों के साथ, तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान की ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्यवान होना चाहिए भगवान को, ये मधुरिमा जो है भगवान की स्वरूप नहीं है। उस प्रकार की ब्रह्मा जी के मन में अपराध उत्पन्न हुआ, उनके हृदय में अनर्थ था, उसको दूर करने के लिए भगवान ने लीला रचाया, कृष्ण ने लीला रचाया। सबको मालूम है बछड़ों को ब्रह्मा ने चुराया चुराया, कृष्ण और ग्वाल बालों को जैसे पता लगा कि बछड़े दिखाई नहीं पड़ रहे, सारे ग्वाल बाल घबरा गए। तो कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं देखूंगा। तो सारवार निश्चिंत हो गए। कृष्ण अपने हाथ में, एक हाथ में दही था, दूसरे हाथ में अचार था। कृष्ण भी दही अचार, दही रईस अचार खाते थे। दही दही रईस था और दूसरे हाथ में अचार था। दोनों हाथों में लेके घूमते ढूंढते ढूंढते हर जगह ढूंढने निकले कृष्ण, कहीं उनको दिखाई नहीं पड़ा। सोचने लगे कहाँ गए बछड़े, कहाँ गए बछड़े। कृष्ण ढूंढते ढूंढते वापस जब आए, उन्होंने देखा कि इधर ग्वाल बाल भी गायब। तो तब कृष्ण सोचने, ये कौन किया होगा। तब उनको याद आया, हाँ हाँ हाँ, ये ब्रह्मा जी ने किया। तब ब्रह्मा जी को मैं शिक्षा दूंगा, सबक सिखाऊंगा। कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को विस्तार किया। कृष्ण ने अपने आप को अनेकों बछड़े अनेकों ग्वाल बाल के रूप में इतना विस्तार किया। ये जो विस्तार है भगवान से कृष्ण का विस्तार, ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में, ये विस्तार सुनने की जिज्ञासा परीक्षित महाराज ने किया था दसवें स्कंद की शुरुआत में। विष्णु और वीर्याणि संशनहा, कृष्ण की लीलाएं बताइए। लेकिन कृष्ण की लीला नहीं बताया परीक्षित महाराज ने। सुखदेव गोस्वामी से पूछा, मुझे विष्णु का लीला बताइए। अभी कोई संशय उठा सकता है, दसवां स्कंद का शुरुआत है, विष्णु कहां से आ गए भाई। परीक्षित महाराज पूछते सुखदेव गोस्वामी, विष्णु और लीलियानी संशण, मुझे विष्णु की लीलाएं बताइए। तत्रांशेरण अवतीर्णस्य विष्णु लीलानी, उसके विषय में श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, परीक्षित महाराज वो लीला सुनना चाहते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु का स्वरूप को दिखाया। विष्णु का स्वरूप दिखाना मतलब क्या है, विस्तार। अपने आप को जहां जहां विस्तार किया, कहां कहां विस्तार किया, भगवान ने तीन जगह विस्तार किया अपने आप को। एक ब्रह्म विमोहन लीला में, दूसरा रास लीला में, और तीसरा द्वारका में। तो खास करके परीक्षित महाराज के मन में जब दसवां स्कंद का शुरुआत होने वाला था, उनके मन में खास करके ये तीन लीलाओं को सुनने की विचार थी। ये भी ब्रह्म विमोहन लीला की विशेषता है। एक है ब्रह्म विमोहन लीला जहां कृष्ण अपने आप को विस्तार किया, वात्सल्य प्रदान लीला। जब यशोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, सारे गोपियों को हृदय में एक दिव्य ईर्ष्या को अनुभव हो रहा था, ये देखो ये बच्चा कितना सुख दे रहा है उनको, यशोदा को, हमको कब देगा, हमको ये सौभाग्य कब मिलेगा, हो सकता है कि अगले जन्म में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कृष्ण जिनको प्राप्त हो केवल मेरे स्तन से दूध पान करे। इतना ही नहीं, बछड़े को दूध पिलाने के समय गाय सोचती थी, अरे रे रे देखो कृष्ण अगर आके मेरा स्तन पान करे। ये जितने भी वात्सल्य रस में डूबे गोपियां सबको ये इच्छा थी, कृष्ण मेरा स्तन पान करे। तो कृष्ण को मालूम था इन सबों की इच्छा पूरा करना है। कृष्ण ने पूरा अपने आप को विस्तार किया इस उद्देश्य के साथ। केवल यशोदा नहीं, जितने भी मेरी माए हैं, जितने भी गाय हैं, उन सबका स्तनपान करूंगा और सबको आनंद प्रदान करूंगा। इस उद्देश्य को मन में रखते हुए कृष्ण ने अपने आप विस्तार किया। जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, वो जैसे दिखते थे, जैसे उनका स्वभाव है, जैसे उनका हाथ है, सब पैर है, वैसे उनका ड्रेस है, अपने आप को विस्तार किया और वापस चल पड़े। देखिए ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था बलराम जयंती के दिन, यानी जन्माष्टमी का एक हफ्ता पहले, यानी भगवान श्री कृष्ण का पांचवां साल पूरा होने के एक हफ्ता पहले हुआ था। अगासुर का वध हुआ उसी दिन, अगासुर का वध होने के बाद ये ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, या भगवान अपने आप को विस्तार किए जब वापस गए, तो उस दिन से एक साल तक की लीला चली। तो ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा के लेके गए थे, पूरा साल भर ऐसा अद्भुत आनंद सारे वात्सल्य रस के भक्तों को। तो बलराम जी, क्योंकि बलराम जयंती था उस दिन, बलराम जी नहीं आए थे उस लीला में भाग लेने के लिए, कि ग्वाल बालों का यह स्वभाव रहता है कि उनका सिस्टम ऐसा है कि एक ग्वाल बाल निकलेगा अपने घर से, अपने बछड़ों को लेकर निकलेगा, दूसरे ग्वाल बाल के घर में जाएगा, वो बोलेगा, वो नाम पुकारेगा, दूसरा ग्वाल बाल बाहर आएगा और अपने बछड़ों को लेकर आएगा। ऐसे सब लोग इकट्ठा इकट्ठा होते होते कृष्ण के घर में आएंगे, कृष्ण बलराम के घर में, नंद महाराज नंद भवन में आके कृष्ण बलराम को पुकारेंगे। तो कृष्ण आ गए बाहर, बछड़ों को लेके आए, बलराम जी नहीं आए। तो ग्वाल बालों ने पूछा, बोले लगे, बलराम आओ जल्दी आओ। तो रोहिणी माता बाहर आके कही, आज बलराम नहीं आएगा, उनका जन्म दिवस है, उनको नहाना है, क्योंकि जन्मदिवस के दिन उनको तेल वेल लगा के पूरा अच्छी तरह से पालिश करके ऑयल बाद दिया जाता है। तो बलराम जी आज नहीं आएंगे, तो आप लोग जाओ। कृष्ण बड़े खुश, वाह बढ़िया, आज फ्री हो गए। इसी आप ऑफिस में जाते हो, आपका बॉस का छुट्टी है, तो कितना रिलैक्स होते ना। क्योंकि यशोदा ने कहा था कृष्ण को, देखो साथ में बलराम इससे तुमको भेज रही हूँ, बलराम का बात सुनना, जैसा बोलेंगे वैसा करना, अगर एक भी कंप्लेंट है ना बलराम जी से, आउट, आज तुम्हारा जाना बंद। अब कृष्ण को ऐसा लगा वाह रिलैक्स, अभी आज कुछ कर सकते हैं, आज कुछ कर रहा, कर भी दिया उन्होंने। अगासुर का वध किया, अपने आप को ऐसा विस्तार किया, वापस आए। बलराम जी को भी पता नहीं लगा, ये बलराम जी अस्तित्व में सारे कृष्ण की लीलाओं को जानते हैं, वो आयोजन करते सब कुछ करते हैं। ये ब्रह्म बोलने का और एक विशेषता ये है कि बलराम जी को भी गुह्य है, बलराम जी को भी नहीं मालूम है लीला इस प्रकार होने वाली है, वो हो रहा है उसको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन बलराम जी को मालूम पड़ा पूरा एक साल पूर्ण होने का आया, पता लग कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहला बलराम जी ने एक नोटिस किया, एक देखा कि जितने भी गाय बछड़े गाय हैं उन बछड़ों से अत्यंत प्रेम कर रहे हैं, और जितने भी गोप हैं गोपियां हैं अपने बच्चों से हैं, उनका प्रेम बढ़ गया है। लेकिन वो प्रेम का स्वभाव कैसा था? जो प्रेम वास्तविकता में जीव को कृष्ण के साथ होना चाहिए ना, ऐसा प्रेम इधर दिखाई पड़ रहा है। तो बलराम जी के मन में विचार चल रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जब एक दिन बलराम जी कृष्ण और सारे ग्वाल बाल मतलब समझ लीजिए कृष्ण के विस्तार, सब गए, तो गोवर्धन की तलेटी के ऊपर सब ग्वाल बाल है, बछड़े हैं, बल कृष्ण है, बलराम है, तो गोवर्धन के पर्वत के ऊपर बहुत सारे गाय हैं और गोपगण हैं। अचानक के गाय और गोपगण गोवर्धन के ऊपर से भागते भागते नीचे उतरे, ऐसा उनका भागम भागता। तो उनका बलराम जी देखने लगे, गोवर्धन पर्वत के ऊपर से भाग के आना, गाय धीरे धीरे चलती है, चढ़ने के समय जल्दी चढ़ जाती है, लेकिन उतरते के समय तकलीफ होता है उनको, उनको कोई परवाह नहीं किया। और जैसे गाय सब पहुंचे, बछड़ों को इतना प्रेम करने लगे, अपने आप स्तन से दूध निकलने लगा, गोपगण गोप ग्वाल बालों को आलिंगन किए, इतना उन दोनों के बीच में ऐसा प्रेम था, गोपों ने ग्वाल बालों को ऐसा आलिंगन किया ताकि वो प्रेम ऐसा था कि अपने आप से जो प्रेम होता है ना, उस प्रकार का प्रेम था। देखिए इस जगत में सबसे ज्यादा प्रेम अगर कोई व्यक्ति किसी से करता है, वो अपने आप से करता है, अपनी आत्मा से करता है, बाद में बाकी सब। और हमारी आत्मा कौन है? कृष्ण है, द सोल फॉर द सोल। हम सोचते हैं मेरी आत्मा, असल में मेरी आत्मा करके कोई है नहीं, मैं ही आत्मा हूं। अगर कोई मेरी आत्मा अगर है तो कृष्ण है। तो अगर सच में अगर मेरा हमारा प्रेम अगर किसी से है तो हमारी आत्मा से, यानी कृष्ण से है। ये बात को भूल जाते हैं लोग, बोलते ना कि स्वार्थी है इस जगत में, वास्तविक स्वार्थी वही है जो कृष्ण से प्रेम करता है। क्योंकि स्व मतलब क्या है? अपने स्वयं अपने साथ में रहने वाले कौन है? कृष्ण है। इसलिए बलराम प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुरासया ये बहिर्थ मानना। जो स्वार्थ गति विष्णु है, कृष्ण ही हमारा स्वार्थ है, ये नहीं जानते, इसलिए वो बहिरर्थी हो जाते, स्वार्थी बहिरर्थी। तो बलराम जी ने देखा जो प्रेम कृष्ण के प्रति होना चाहिए, वही प्रेम इन ग्वाल बालों को दिखा रहे, तो कुछ गड़बड़ है। तो ब्रह्मा बलराम जी ने और एक नोटिस किया, और एक चीज देखा, क्या था? गाय अपनी बछड़ों से प्रेम कर रही है, लेकिन उन बछड़ों को प्रेम कर रही है जो एक साल पहले जन्म लिया था। तो एक साल के बीच में जो जन्म लिए ना, उन बछड़ों को इतना प्रेम नहीं कर रही है। स्वभाव रहता है कि मां का या कोई गाय का, जो अभी जो बछड़ा जन्म लिया है ना, जो बच्चा जन्म है, सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उससे ज्यादा प्रेम होता है। लेकिन बलराम जी ने देखा है कुछ रिवर्स है इधर, एक साल के बीच में जो गाय बछड़े बछड़ों को जन्म दिया, वो गाय उस बछड़े को ज्यादा ध्यान नहीं देता है, एक साल पहले के बछड़ों से प्रेम कर रहा है। और जो बच्चे अभी जन्म लिए जिन गोपियों का, वो गोपियां उन बछड़ों को ज्यादा ध्यान नहीं देती है, ये जो ज्यादा दूध उनको दे रही है, जो एक साल पहले जन्म लिए, जो ग्वाल बालों को एक साल पहले जन्म लिया, ऐसी वो ग्वाल वालों को ज्यादा प्रेम कर रही है, ये क्या है भाई? तो कृष्ण को अकेले बुलाया, बलराम ने पूछा, बताओ कुछ तो गड़बड़ है। ये तो 8-10-15 दिन की पहले की बात है, जन्माष्टमी 10-15 यानी कृष्ण के छठा जन्माष्टमी का 15 दिन पहले की बात है। तो ने पूछा, बताओ कुछ तो गड़बड़ है, तो कृष्ण मुंह नीचा लटका है, कहा कि बड़ा भाई है पूछकर बताना पड़ेगा। मैंने कहा देखो क्या करो, तुम जिस दिन नहीं आया था ना उस दिन ये सब गड़बड़ हुआ है। तो बलराम जी समझ गया और चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोला। तो बलराम जी को मालूम पड़ा तो प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, कृष्ण ने बलराम जी को भी क्यों नहीं बताया, वाई ही डिड नॉट डू सो। इसके विषय में बलराम जयंती के दिन चर्चा की थी, बलराम जी का वृंदावन गमन को अध्याय के ऊपर प्रवचन दिया। पहला श्लोक में ही उत्कंठिता ये शब्द आया है, रतम मारूढ़ व्रजम व्रजौ कसाम उत्कंठिताया, ये शब्दों के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा बलराम जी को व्रजवासियों से इतना प्रेम है ना, कृष्णम अपि परित्यज्या, ये शब्द आया है भागवत में। कृष्ण को अभी त्याग करके बलराम जी व्रजवासियों को मिलने गए, 2 महीना रुके व्रज में। कृष्णम अभी परित्यज्या यानी बलराम जी का जो प्रेम है व्रजवासियों के प्रति वो इतना गाढ़ है, उत्कंठता थी। इसी प्रकार कृष्ण को मालूम था व्रजवासियों से, ग्वाल बाल से इतना प्रेम है बलराम जी का, अगर मालूम पड़े ना ब्रह्मा जी चुरा के लेके गए, उसी समय बलराम जी ब्रह्मा जी का सीधा कर देते, ये लीला नहीं हो पाता। तो इसने कृष्ण सोचा डर डर के बलराम जी को मालूम ना हो इस बात को, लेकिन अभी सामने सामने तो देखिए दूर हो ना झूठ बोल सकता है व्यक्ति, सामने झूठ नहीं बोल सकता ये स्वभाव है। बलराम जी के सामने कृष्ण झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि दूर थे, कुछ भी गड़बड़ सब हो जाता गड़बड़, लेकिन जब टीचर सामने है, माँ सामने है, कोई बड़ा व्यक्ति सामने है ना, तब गड़बड़ नहीं होता। तो कृष्ण सामने, अभी कृष्ण बलराम जी सामने कृष्ण को रहा नहीं, बोल बोल दिया। बलराम जी चुपचाप रहे क्योंकि उनको मालूम है वात्सल्य रस जो है वो श्रेष्ठ है साक्ष्य से, ठीक है। इस प्रकार बलराम जी मान गए और वापस बलराम जयंती आया, यानी 6ठे साल का जन्माष्टमी के पहले वाला बलराम जयंती आया। कृष्ण लेके गए ग्वाल बालों, यानी अपने विस्तार से मतलब बच्चों को लेके गए। उस दिन एक दृश्य हुआ, ब्रह्मा जी आए ये देखने के लिए, 1 साल हो गया व्रज में क्या चल रहा है देखो। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए, देखा कि वैसा का वैसा सब कुछ है एज इट इज। तो ब्रह्मा जी एकदम उनका हालत खराब हो गया, सोचा कि क्या है, मैं किसको चुरा के गया था। तो ब्रह्मा जी जाके तुरंत देखे जहां चुरा के छुपा के रखे थे ग्वाल बाल उधर भी है, वापस आके देखे इधर ग्वाल बाल बच रहे इधर भी है। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या मेरा मोह क्या है, ऐसा है क्या जब मैं उधर जाता हूं सारे ग्वाल बाल उधर चले जाते हैं, मैं इधर आता हूं तो ग्वाल बाल इधर आ जाते हैं क्या। तो पूरा कंफ्यूज ब्रह्मा जी, एकदम उनकी आंखों में आंसू आने लगा, क्या हो क्या रहा है, उनका पूरा शरीर कांपने लगा। इस स्थिति को देख के भगवान ने सोचा अभी ज्यादा उनको तंग नहीं करना है। ब्रह्मा जी अंततः तो ब्रह्मा जी को एक दृश्य दिखाया, बड़ा अद्भुत दृश्य है। ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा, सारे जितने ही बछड़े हैं, सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं, उन सारे बछड़े ग्वाल बाल वालों के शरीर से चतुर्भुज वासुदेव रूप प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा, इन रूपों को देखते हुए देखा सारे जितने भी अन्य पार्षद है भगवान के, सारे विश्व रूपों को आराधना कर रहे हैं, लाखों करोड़ों पार्षद इन रूपों को आराधना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को सबसे पहला भगवान ने वैकुंठ को दिखाया, ऐश्वर्य को दिखाया। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये पूरा ऐश्वर्य, सारे जो स्वरूप है वो कहां है, इस वृंदावन के एक कोने में कचरे जैसा पड़ा हुआ है, ये कचरे धूल रहता है ना, धूल एक कचरा में। तो ब्रह्मा जी एकदम बिल्कुल हैरान। तो धीरे 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 से भगवान ने क्या किया, सारे रूपों को उन्होंने संभाल लिया और सारे जगत ब्रह्मा जी को बताया, देखो मेरे एक एक ग्वाल बाल है ना, उनके सामने विष्णु स्वरूप भी कुछ भी नहीं है। वृंदावन का वैकुंठ जो है, वैकुंठ का ऐश्वर्य जो है, वृंदावन का एक धूल के समान भी नहीं है। देखा ब्रह्मा जी एकदम बिल्कुल इसको देख के विमोहित। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे हुआ क्या, कोई व्यक्ति पूछ भी सकता है प्रश्न कि भगवान ने वापस वाल बालों को लेके आएगा, अपने आप को सारे स्वरूपों को उन्होंने विड्रॉ कर दिया, लेकिन हुआ क्या था, ब्रह्मा जी का कोई औकात है, ग्वाल बालों को स्पर्श करने को, बच्चों को स्पर्श करने का भी औकात नहीं है, चुराने की बात तो छोड़ो, बोलते ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुराया, बोलने के मात्र है, स्पर्श करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि जो वैकुंठ धाम वृंदावन का एक गण के रूप में माना जाता है और जो विष्णु मूर्तियां जो भगवान का ईश्वरी स्वरूप ग्वाल बालों के तुलना में भी कुछ भी नहीं है, तो क्या कहना ब्रह्मा जी को, क्या कहना जो आके ग्वाल बालों को चुराए। अस्तित्व में ब्रह्मा जी ने किन को चुराया था? माया के द्वारा सृष्टि किया गया एक नकली बाल बाल और बछड़ों का एक सेट था, उसको चुराया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने असली ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा रहे नहीं, चुराने का औकात क्या, स्पर्श करने का औकात नहीं, चुरा कैसे सकते बताओ। तब इधर कहा गया है कि तीन ग्वाल बालों का सेट है, एक जो असली जो ग्वाल बाल हैं, जो बछड़े हैं जो भगवान के साथ लीलाएं करते हैं, दूसरा जो माया के द्वारा सृष्टि किया गया ग्वाल बाल है, माया के द्वारा सृष्टि किए गए जो बछड़ों का जो एक झुंड है जो भौतिक रूप में है, उन्हीं को ब्रह्मा जी स्पर्श कर पाए, उन्हीं को चुरा पाए। और तीसरे ग्वाल बालों का सेट गया जो कृष्ण का विस्तार है, ये ब्रह्म विमोहन लीला का विशेषता है। तो ब्रह्मा जी इन सारे बातों को समझ गए, और वैसे तो एक बार विमोहित होता है ना व्यक्ति, भगवान का विशेषता को ऐश्वर्य को देख के हृदय में जो है ब्रह्मा जी ऐश्वर्य की भावना निश्चित रूप में है, लेकिन ऐश्वर्य की भावना में स्थित होने के बाद भी दीनता की बात आई, दयनीय हो गए। मान लो कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, मैं वो कर दूंगा ये कर दूंगा, बाद में हताश हो जाता है ना, तब वो सोचता है कि मैं कोई काम का नहीं, मैं किसी का लायक नहीं हूं, ये दीनता कहा जाता है। जब ब्रह्मा के हृदय में जैसी दीनता हुई, भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, उनके हृदय में प्रेम भरा, और उस प्रेम भरी हृदय में ब्रह्मा जी इन प्रार्थनाओं को प्रारंभ करते हैं। इन प्रार्थनाओं का पहला श्लोक थोड़ा हम सब उच्चारण करने के लिए प्रयास करें, मेरे बाद उच्चारण करने के प्रयास करें। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिडंबराय गुंजावतं सपरिप्रच्छल सन्मुखाय वन्यस्वजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिडंबराय गुंजावतं सपरिप्रच्छल सन्मुखाय वन्यश्रजय कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय नौमीढ्यते भ्रवपुषे तरिडंबराय। तो भगवान के सामने या ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए, अभी ग्वाल बाल बछड़े कोई नहीं है, ब्रह्मा जी अकेले हैं और भगवान अकेले हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा मैं जिनको चुराया था वो नकली ग्वाल बाल थे, वो माया के द्वारा सृष्टि किए गए थे, असली ग्वाल बाल बछड़ों को किसने चुराया था, कृष्ण चुराया। नाम आया ब्रह्मा जी का, लेकिन कौन चुराया, कौन ग्वाल बालों को बछड़ों को छुपा के कौन रखा, कृष्ण छुपा के रखा। अगर कोई प्रश्न पूछे एक साल तक कृष्ण ने बछड़ों को ग्वाल बालों को छुपा के रखा तो कहां छुपा के रखा, कैसे छुपा के रखा, तो वो ग्वाल बाल बछड़े क्या कृष्ण के विरह में तड़प नहीं रहे थे? तब श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं भगवान का एक विस्तार था उन ग्वाल बाल बछड़ों के साथ, उनको मालूम नहीं पड़ा कि पूरा एक साल कैसे निकला, क्योंकि कृष्ण का मधुरिमा को आस्वादन करते हुए सारे बछड़े ग्वाल बाल एकदम दग्ध हो गए थे, मुग्ध हो गए थे, और मालूम कैसे उनको मालूम नहीं पड़ा कि एक साल नहीं हुआ, तो उनको मालूम नहीं पड़ा कि बलराम जी नहीं है, बलराम की विरह में ग्वाल बाल कैसे रहते थे, तो उनको मालूम नहीं पड़ा था कि एक साल हुआ, खाली एक क्षण जैसा लग रहा था ग्वाल बालों को। तभी उन ग्वाल बालों को चुराया, वास्तविकता में कृष्ण नाम आया ब्रह्मा जी का, लेकिन अभी कृष्ण ग्वाल बाल बछड़ों को लाया ने भी ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सामने? आश्चर्य की बात है, जिस रूप में भगवान ग्वाल बालों को ढूंढने गए थे ना, अभी एक साल हो गया, एक साल पहले जिस अवस्था में ब्रह्मा भगवान कृष्ण जो है ग्वाल बालों को ढूंढने गए थे, एक हाथ में दही दूसरे हाथ में अचार, एक साल का पुराना है मालूम नहीं, जो भी है वो दिव्य है, एक साल का वही दही और यही अचार के साथ में कंफ्यूज स्टेट में। अभी तो विमोहित किया ब्रह्मा जी को, लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे कृष्ण भी विमोहित है, वही विमोहित अवस्था है, एक हाथ में दही रहे से, एक हाथ में ये है और उस अचार है उसको लेके ढूंढ रहे। अचानक ब्रह्मा मिल गए साथ सामने, कृष्ण बोले ब्रह्मा जी को देख के उन्होंने देखा क्या क्या हो रहा है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने प्रणाम किया सबसे पहला, नवमी नवमी मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं प्रणाम करता हूँ, एक बच्चा है 5 साल का बच्चा है, 5 साल में 6 साल हुआ समझ लो, 5 साल का बच्चा है, उनके सामने नवमी ढिया, नवमी ये शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है मैं प्रणाम कर रहा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं प्रणाम करता हूं, तो ब्रह्मा जी ये प्रार्थनाओं को नवमी शब्द के द्वारा क्या सूचित करना चाहते, क्या कहना चाहते भगवान कृष्ण से? सबसे पहला ये कहना चाहते हैं कि हे भगवान, आपको प्रसन्न करना है तो आपका गुणगान करना है, मैं आपका गुणगान करना चाहता हूं, और मेरा ये जो गुणगान है उस गुणगान के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप मुझे माफ कर दो, क्योंकि आप प्रसन्न हो जाओगे तो मुझे माफ करोगे। देखिए प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है ना, प्रणाम में शरणागति में इतना ताकत है ना, हमारी अपराधों को भगवान माफ कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, और भले ही हमको उसका रिएक्शन आए नहीं आए जो भी है साथ में तो रखेंगे। देखिए कुछ लोग गलती करते हैं, अपराध करते हैं और डरते हैं मुझे सजा ना मिले, लेकिन सबसे बड़ी सजा क्या मालूम? उपेक्षा, उससे बढ़कर कोई सजा नहीं है। इसलिए भक्त क्या चाहता है, भगवान जो सजा देना, जो करना है कर लेना, एक चीज मत करना, मुझे त्याग मत करना, डोंट रिलिंक्विश मी, क्योंकि अपराध करना हमारा स्वभाव बन चुका है, अनेकों सालों का अनेकों जन्मों का ये तीनों गुणों का प्रभाव की वजह से, जड़ प्रकृति वजह, जड़ बुद्धि की वजह से, जब तक ये जड़ बुद्धि रहता है, जड़ बुद्धि मतलब क्या है, मैं कुछ कर सकता हूं इस जगत में, उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है, आई कैन डू समथिंग, खाली विचार ही जड़ बुद्धि है, मैं कर सकता हूं मतलब क्या है, मेरे पास ये सामर्थ्य है, मैं ये हूं मैं वो हूं, सब निकल जाता है, मैं कर सकता हूं, जड़ बुद्धि की वजह से अनेकों अनेकों अपराध होता है। तो भगवान के सामने जाके, विग्रहों के सामने जाके प्रार्थना प्रणाम करने से ये एक विशेषता है कि भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ में रखेंगे, भक्ति में रखेंगे, भक्तों के साथ में रखेंगे, भले ही हमको उसका सजा मिले। इसलिए भगवान से प्रार्थना नहीं करना है, ऐसा प्रार्थना नहीं करना है भगवान माफ कर दो सजा मत देना, इंद्र जैसा प्रार्थना नहीं करना, इंद्र ने ऐसी प्रार्थना किया था, इंद्री प्रार्थना जो है विशेष है, जैसे आप गोवर्धन लीला की जब रोज भागवतम क्लास में चर्चा हो रहा है उसमें इंद्र की प्रार्थना के पीछे एक ही उद्देश्य था, क्या था, मेरा पोस्ट ना चले जाए। इतना हद तक कि जब इंद्र भगवान से प्रार्थना करने के लिए आ रहा था, सुरभि गाय के साथ में आ रहा था, सुरभि गाय ने कहा इंद्र बेशरम अभी तो कम से कम उतरो ऐरावत से, ठीक है अब उतना दूर आया, अभी कृष्ण दूर नहीं है, कम से कम प्रार्थना करने जा रहे हो, शरण लेने जा रहे हो, तो कम से कम उतर के तो जाओ, चल के तो जाओ ऐरावत के ऊपर आके, भाई अभी इतना तुम्हारा अपमान हुआ लेकिन फिर भी ऐरावत से उतरने का बुद्धि नहीं है तुमको। तो सुरभि जैसे कहा इंद्र ने देखा थोड़ा शर्माते नीचे उतर के वो प्रार्थनाओं को शुरू किया, प्रार्थनाओं के पीछे इंद्र का एक ही उद्देश्य था, हे इंद्र ने कहा है भगवान आप मुझे सदा दे चुके हो और सदा मत देना, मैं इंद्र हूं और मेरा जो इच्छा है, मेरी जो संकल्प है, उसको आपने एकदम बिल्कुल तिरस्कार कर दिया। इससे बढ़कर सदा क्या हो सकता है मुझे? आप कुछ भी कर लेना, मेरा इंद्रत्व को बचा के रखना। चाहे तो मेरा इंद्रत्व आपको दूंगा, किसी और को मत देना आप। क्योंकि हमने सुना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है तो वापस आप दे ही देते हो। तो इंद्र की प्रार्थनाओं के पीछे उद्देश्य ये था क्या कि मेरा तो इंद्र कृष्ण हंस रहे थे, कृष्ण का इंद्र की प्रार्थना सुनते सुनते और मुस्कुराते हुए इंद्र ने कहा स्वीकार कर, चलो मैं इंद्र बनता हूं। तो इंद्र ने कृष्ण को अभिषेक करके कृष्ण को इंद्रत्व दिया, उसके बाद उनको नामकरण किया गोविंद इत्यादि। तब बाद में कृष्ण ने कहा ठहरो, तुम ये मुझे नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं ऐसा ठीक हूं, तुम वापस देखे जो अपने इंद्रत्व को। नहीं, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में इधर ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण की मधुरिमा में डूबे हुए और अपना जो ऐश्वर्य या अपनी जो आदर की जो स्वभाव है, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान में तो आदर की भावना रहता है, आदर को बना के रखते हुए कृष्ण की मधुरिमा में डूबे हुए है। ऐसी अवस्था में ब्रह्मा जी इन प्रार्थनाओं करते हुए वो सबसे पहला नवमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नवमी शब्द के पीछे उनका उद्देश्य ये था, हे भगवान, हे कृष्ण, मेरे जो अपराध है उसको आप माफ कर दो। कुछ भी हो मुझे उपेक्षा मत करना, हमेशा आपके साथ में रखना। तो सबसे पहला इड्या, इड्या मतलब क्या है? मैं आपको नवमी इड्या, इड्या मतलब आपको पूजा करता हूं। पूजा उसी व्यक्ति का किया जाता है जो श्रेष्ठ होता है, जो श्रेष्ठ होता है उसी का पूजा किया जाता है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है या कृष्ण प्रश्न पूछ सकते, क्या कर रहे हो ब्रह्मा जी? क्या कोई 5 साल का बच्चा है, एक वृद्ध व्यक्ति है, बड़े महान व्यक्ति है, वो आके प्रणाम करने लगे, बच्चे को क्या अनुभव होगा, क्या क्या लगेगा? बोले कि ये क्या हो रहा है? तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद अपनी वैष्णव तोषिणी टीका में इस बात को लिखते हैं, कृष्ण को अजीब सा लगने लगे, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो ब्रह्मा जी आप महान हो, मुझे मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो, मुझे क्यों आप आदर दे रहे हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नवमीढ्य अभ्र वपुषे, वपु आपका वो वपु है ना, दिखता है बच्चा जैसा, दिखता है छोटा, हाँ, लेकिन है भगवान, ये सारे जितने भी विष्णु तत्व है, सारे जितने भी उनके आपके जो जगत में दिखाई पड़ रहा है, पूरा जगत क्यों ना हो, विष्णु के स्वरूप क्यों ना हो, देवताओं का स्वरूप क्यों ना हो, सारे चीजों का ये आपका ये जो स्वरूप है वो आपका ये सबका स्रोत है, मैं समझ गया हूं। यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग मतलब आपके द्वारा ही सब कुछ प्रकट होता है। जितने भी अवतार है, नरसिंहदेव का महान वपु, वराह रूप का वपु, जितने भी वपु हैं, वो सारे वपुओं का श्रुत ये छोटा सा रूप है। यानी आपकी जो माधुरीमय स्वरूप है, द स्वीटनेस, द फॉर्म ऑफ योर स्वीटनेस इज अ सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन। सबसे पहली बात ब्रह्मा जी ने इस वपु शब्द के द्वारा उन्होंने संबोधित किया, नवमीड्यते अभ्र वपुषे, आपका वपु जो है ये सारे अवतारों के स्रोत है, इसलिए आपको प्रणाम किया तो सभी को प्रणाम किया, समझ लो इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो बाद में कोई व्यक्ति पूछ सकता है, अच्छा बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी नहीं मालूम, आपको कैसे मालूम पड़ा ये बात? जैसे बच्चा बात करता है ना, ऐसे कृष्ण पूछा, ऐसे श्रीपाद सनातन गोस्वामी बात कहते हैं अपनी वैष्णव तोषिणी टीका में, दसवां स्कंद की टीका में, कि अच्छा अच्छा मुझे प्रणाम कर रहे हो, ठीक है, ये शरीर से सब आया, मुझे भी नहीं मालूम, आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम पड़ा? पहले नहीं मालूम पड़ा, अभी कैसे मालूम पड़ा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मद अनुग्रहस्या, मेरे ऊपर आपका विशेष अनुग्रह है ना, इसलिए मुझे समझ में आया कि ये जो आपका बच्चे वाला रूप है ना, इधर ग्वाल बाल का जो स्वरूप है ना, ये सारे जितने भी रूपों का स्रोत है, अब देखिए खासकर के आजकल भारत में, आजकल नहीं पहले से भारत में, खासकर दक्षिण भारत में लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, सारे स्वरूपों के स्रोत कृष्ण है। वो सोचते हैं कृष्ण जो है एक अवतार है, लेकिन अवतार नहीं है बल्कि अवतारी है, जो सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन। प्राय भक्त जब किसी को प्रचार करने जब जाते हैं तो तुरंत इस बात को उठाते लोग, नहीं नहीं विष्णु के अवतार है, कृष्ण का अवतार है विष्णु का। ऐसा नहीं कह सकते वो गलत है, लेकिन अगर सच में देखा जाए वो एब्सोल्यूट रूप में देखा जाए, रस के दृष्टिकोण से देखा जाए, सारे जितने भी भगवान के रूप है वो कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। उसका प्रमाण क्या है? मैं ऐसा पूछता हूं जनरली लोगों से कि आपको मालूम है दशावतार, तो दशावतार का नाम बताओ, तो एक एक नाम लेना शुरू करते हैं, मत्स्य, कूर्मवरा, नरसिम्हा, नाम लेते लेते आएंगे, कृष्ण का नाम भी अवतार मिलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आपने दशावतार स्तोत्र सुना है? तो हां सुने हैं। तो उसके अंदर क्या क्या अवतार का नाम बताइए? उन दस अवतार जो जयदेव गोस्वामी लिखते हैं गीत गोविंदम में, उसमें कृष्ण का नाम नहीं है दशावतारों की लिस्ट में। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे कहते कहते हम पहले एक सब श्लोक पे गाता है, केशवद्रीता नरहरि रूपा, केशवद्रीता रघुपति रूपा, जय केशवद्रीता दशविध रूपा, जय जगदीश हरे। तो ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं, नौमीड्यते ब्रवपुषे, आपका वपु जो है सारे अवतारों के स्रोत है। और साथ साथ में ये बात मुझे इसलिए समझ में आया क्योंकि आपका विशेष अनुग्रह है मधुरग्रहस्या। तो कोई कहे अच्छा ये मेरा शरीर जो है, आप बोलते हो कि ये जो स्वरूप से कृपा प्राप्त हुआ आपको, इसके वजह से मैं समझ पाया, आप देख नहीं पाते मैं बच्चा हूं, वैसे मैं बाल बालों को ढूंढ रहा हूं, बच्चों को ढूंढ रहा हूं, मैं खुद परेशान हूं, या कोई भक्या भगवान जो ऐसे परेशान होते हैं क्या? उनको सब मालूम होना चाहिए, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, मैं खुद परेशान हूं, मैं ढूंढ रहा हूं। तब ब्रह्मा जी भूतमयस्य कोपी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। भूतमयस्य मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि आपका जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, नहीं बना हुआ, आपका शरीर जो है दिव्य है। अगर कोई कहे भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है अच्छा इतना है, तो मेरा शरीर अगर पंच महाभूतों से नहीं बना तो किससे बना हुआ है? स्वेच्छा मयस्य मतलब क्या है? अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कर सकते हो आप। आपने अभी ये जो रीला रचा है ना, केवल अपनी स्वेच्छा के द्वारा किया है, वो किसी के वश में आके नहीं किया है, इसलिए स्वेच्छा मयस्य ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भूतमयस्य स्वेच्छा मयस्य इन शब्दों के द्वारा ये श्रीपाद सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी और कृष्ण के बीच में इस प्रकार का संवाद हुआ। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर पाक इसको बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं कि नौमीड्यते ब्रवोषिते तदंबराया गुंजावतम स परिपृच्छ रसन मुखाया वन्ये श्रोत्र कवल वेत्र विषाणवेणु लक्ष्मेश्वरे मुदिपदे पशुपांगजाया। उन्होंने वर्णन किया अभ्रवपुषे, हे कृष्ण आपका शरीर कैसा है मालूम है? आपका शरीर जो है उससे इतना कृपा का बारिश हो रहा है, जैसे बादल, बादल से क्या होता है? बारिश होता है। लेकिन कृष्ण आपके शरीर से केवल कृपा का बारिश हो रहा है, जैसे बादल का रंग क्या होता है? नीला होता है, इसलिए आपका शरीर भी नीला रंग है। और तडित अंबराया, जैसे बादल जो है जब वो बिजली चमकता है उसका रंग जैसा आपका वस्त्र है। देखिए ब्रह्मा जी कितना काल्पनिक, अपने दिव्य कल्पना से या आध्यात्मिक कल्पना से भगवान की ये जो स्वरूप है उस स्वरूप का वर्णन करते गए थे, आपका स्वरूप कुछ और नहीं है, वो केवल कृपा को बरसाने वाली स्वरूप है। बाद में कहा गुंजावतम स परिपृच्छ लसन मुखाया, तो ब्रह्मा जी गुंजावतम सवर्णन करते हैं, आपका शरीर में अनेकों अनेकों आभूषण है, लेकिन ये गुंजा माला जो है ना, जो आप धारण किए हैं वैकुंठ में, आप अनेकों अनेकों आभूषणों को धारण करते हैं, उनकी तुलना में ये गुंजा माला जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, वनमाला धारण करते हो, ये वनमाला जो है वैजयंती माला से भी श्रेष्ठ है, यानी ब्रह्मा जी का साक्षात्कार हो चुका है। क्या है? भगवान का ये जो माधुरीमय स्वरूप है वैश्वर्य से श्रेष्ठ है। वन्ये श्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुम, आप अनेक अनेक आयुधों को धारण करते हैं वैकुंठ में, शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन ये जो विशाल वेणुम जो है, वेणु जो है वो शंख चक्र गदा पद्म से भी वो श्रेष्ठ है। लक्ष्माश्रिय मुदुपदे पदु पशुपांगजाय, लक्ष्माश्रिय ये जो गोपियां हैं वो अनेकों अनेकों लक्ष्मियों के ऊपर भी श्रेष्ठ है। मृदुपदे पशुपांगजाय, मृदुपदे आपका चरण मृदु है, वैकुंठ में आपको वज्र वैढूर्ण से बना हुआ आप जूतों को अपने अपने आभूषण को धारण करते हो, लेकिन आपकी चरण कमलों का जो धूली है ना, मृदु पदे आपकी चरण में जो एक धूली है, धूली का कण है, वो वैकुंठ के अनेकों अनेकों आभूषण पूरा वैकुंठ से भी बढ़कर है। अपने ब्रह्मा जी साक्षात्कार कहते इन पदों के द्वारा। पशुपांग जाया, ब्रह्मा जी बहुत रहस्यमय बात को कहते हैं। जन्माष्टमी हम सब भक्तों को, खास करके गौड़ी वैष्णव भक्तों को ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मा जी स्वयं जो वेदों की वेत्ता है वो कहते हैं, हे भगवान आप कौन हो? पशुपा, पशु को पालन करने वाले, आंगा उनके शरीर से जाया मतलब जन्म लिए हैं, यानी आप नंद महाराज के पुत्र हो, यशोदा नंद के पुत्र हो, ब्रह्मा जी ने कहा। वैसे भागवत में बहुत जगह ऐसा प्रमाण मिलता है जहां ये स्पष्ट रूप में साबित हुआ है कि कृष्ण यशोदा की गर्भ से जन्म लिए। वैसे सब लोग जो है सोचते हैं कि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ है, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, लेकिन वास्तविकता है जो हमारे कृष्ण है उसका जन्म मथुरा में नहीं हुआ है, गोकुल में हुआ है। मथुरा में भगवान का प्राकट्य हुआ है, जन्म नहीं हुआ। जन्म कृष्ण का गोकुल में हुआ। आप कैसे कह सकते इस बात को? भागवत ही उसका प्रमाण है। सबसे पहला भगवान प्रकट हुए वसुदेव के मन में। वसुदेव के मन से भगवान, वसुदेव ने क्या किया भगवान को, कृष्ण को, वो देवकी के मन में उन्होंने ट्रांसफर किया। उसको दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा की प्रणाली मतलब क्या है? भगवान जो है वो शुद्ध भक्त के हृदय में निवास करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा विश्राम, गोविंद विश्राम, गोविंद शुद्ध भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं। जब शुद्ध भक्त का अनुग्रह होता है तब दीक्षा प्राप्त हो, उसमें क्या करते हैं शुद्ध भक्ति, क्या करते हैं कृष्ण को हमारे हृदय में इंस्टॉल करते हो, वो प्रकाशित करते हैं। देवकी के हृदय में वसुदेव ने किया, देवकी के शरीर से ऐसा प्रकाश उत्पन्न होने लगा, कंस उसको देख के एकदम भयभीत होने लगा, सोचने लगा अभी क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी सिंहासन में बैठता था, कभी अपने सोने के लिए जाता, नींद नहीं आ रहा, कंस एकदम परेशान। उस अवस्था में सारे देवता लोग आए, देवता लोग उज्जैन में कंस और देवकी है, और सारे देवता लोग उन्होंने स्तुति किया। किनका स्तुति किया? कृष्ण जो गर्भ में है। कहां? देवकी के गर्भ, मतलब देवकी के पेट में नहीं थे, देवकी के मन में थे या हृदय में थे। स्पष्ट रूप में कहा गया कि इधर देवकी के हृदय में भगवान स्थित थे, पेट में नहीं थे। अगर पेट में नहीं थे, पेट से बाहर कैसे आएंगे? जन्म मतलब माँ के पेट में होना चाहिए, पेट से बाहर निकलना चाहिए और मलमूत्र से जरा लेपित होना चाहिए। उनका जो कनेक्शन है भगवान के शरीर, वो बच्चे के शरीर के साथ, नाम नाभि के साथ, माँ का नाभि के साथ, वो होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो तो हुआ ही नहीं। तो सारे देवताओं ने प्रार्थना किया, हे भगवान आप प्रकट होते हो, ये है वो है, बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करने लगे। सत्यम 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 अनेको सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य यो निमनीतम सत्य, अनेको अनेको श्लोकों के द्वारा प्रार्थना किए। प्रार्थना करने का भगवान की प्राकट्य का वर्णन हुआ, जन्माष्टमी का वर्णन हुआ, ऐसा पूरा भागवत में वर्णन हुआ कि किस प्रकार भगवान कैसे प्रकट हुए, देवी के अचानक बाहर प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि देवी गर्भ से प्रकट हुए, बच्चा जन्म लेता है कपड़े पहन के जन्म लेता है क्या? ऐसा वर्णन आता है कि चंक चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और उनका एकदम बिल्कुल सुंदर सा वस्त्र है, किरीट है, मुकुट है और कृष्ण हंस रहे हैं। तो देवकी के सामने कृष्ण प्रकट हुए, एक जन्म नहीं लिए। लेकिन वही भागवत कहता है जब कृष्ण छोटे रूप में होंगे, जब नंद महाराज लेके गए कहां, गोकुल, जब गोकुल लेके गए तो एक बच्ची थी, बच्ची के साथ में अस्तित्व में और एक बच्चे का जन्म हुआ, यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ। क्योंकि नंद महाराज अगले दिन सुबह उठ के सब नंद गोपों ने सब देखा कि उन्होंने जातक संस्कार कर्म मनाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण की शरीर के साथ और यशोदा का शरीर के साथ जो नाभि का जो नाल होता है कनेक्शन था उसको कट किया। अगर कृष्ण को वसुदेव लेके आए हैं और इधर रखे, ऐसा थोड़ी ना कि नाभि में कनेक्शन करके गए थे। तो क्या हुआ, जैसे यशोदा के सामने, देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए, उसी समय यशोदा के सामने कृष्ण जन्म लिए, यशोदा के गर्भ से जन्म लिए। जैसे बच्चा जन्म लेता है क्या क्या करके ना रोते हुए बाहर आता है, मनमूत लगा रहता है, क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं है कृष्ण को यशोदा के सामने ये अपना ईश्वर दिखाने की। जैसा साधारण सा बच्चा जन्म लेता है ऐसे जन्म लिया उन्होंने। देवकी के सामने भगवान ने जो ऐश्वर्य रूप को प्रदान किया, क्योंकि यशोदा का वात्सल्य की शक्ति इतना है, कृष्ण चाहते हैं कि मैं यशोदा का पुत्र हूं। उसी बात को ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं पशुपांग जाया। इतना ही नहीं, भागवत अन्य जगह वर्णन हुआ है किस प्रकार जब दुर्गा देवी माया को कंस मारने गया, उस समय माया देवी दुर्गा का वर्णन हुआ है कृष्ण की सहजा, कृष्ण के साथ में जन्म ली है। इससे यशोदा ने दो बच्चों को जन्म लिया एक ही साथ में, क्योंकि कृष्ण का जन्म हुआ साथ साथ में माया, युग माया का भी जन्म हुआ। जब वसुदेव गए तो क्या हुआ, ये जो कृष्ण हैं, जो जिनके उनके सामने जो प्रकट हुए कृष्ण हैं, वासुदेव कृष्ण ब्रजेंद्र कृष्ण के शरीर में समा गए, ये बात वसुदेव को भी मालूम नहीं पड़ा। उधर एक बच्ची थी, उस बच्ची को लेके आए, योगमाया को लेके आए वसुदेव। जब लेके आए तो देवकी के हाथ में दिए, कंस आके इस योगमाया को हाथ में लिया। जब योगमाया को कंस ने हाथ में लिया तो कंस के हाथ में योगमाया नहीं आई, दुर्गा जी आई, महामाया आई, क्योंकि कंस का कोई अवकाश नहीं है योगमाया को स्पर्श करने की। तो कंस के हाथ में दुर्गा जी आई और दुर्गा जी को एकदम बिल्कुल मारने गया। उस समय दुर्गा जी ने क्या किया, कंस के पैर के सर के और पैर रख के उड़ते हुए बोलने लगी हंसते हुए, तुमको मारने वाला बच्चा कहीं और पल रहा है। तो इसलिए यशोदा के पुत्र है कृष्ण। ब्रह्मा जी इस बात को गुप्त रूप में कहते हैं मृदुपदे पशुपांग जाया, ब्रह्मा जी का साक्षात्कार है। अस्यापि देव वपुषे मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य नतभूतमयस्य कोऽपि नेषेमहे त्वमसि तुम मनसांतरेण साक्षात्तेव किमुतात्म सुखानुभूते। इसके विषय में पहले सनातन गोस्वामी पाद का टीका में इसको वर्णन किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप में श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने कहा अपनी टीका में कि स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान आपके शरीर जो है स्वेच्छामय है, कोई भी कुछ भी कर सकते हो। न तु भूतमयस्य कोऽपि, आपका शरीर भौतिक भूत पंच महाभूतों से नहीं बना है। अस्यापि देवपुत्रे मदनुग्रहस्य, मैं ये आपका ये जो शरीर है, देखिए भगवान का जो स्वरूप होता है ना, ये स्वरूप का विशेषता है, जो भी दर्शन करता है उस स्वरूप से भगवान की कृपा का बारिश होता है। क्या है वो भगवान की कृपा? ये समझना कि भगवान की प्रत्येक कार्य जो है दिव्य है, उनकी शरीर दिव्य है, ये तीनों गुणों से नहीं बना है। नेशे मही तम वसितुम मनसांतरेण, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे मनसांतरेण मनस में हमेशा साक्षात त्वयैव किमुतात्म सुखानुभूते। देखो बाकी लोगों की क्या कहना, अनेकों अनेक प्रकार के सुख के पीछे पड़े रहते हैं। आपका ये जो शरीर जो दिखाई पड़ रहा है उसको मैं मनसांतरेण हमेशा स्मरण करता रहूंगा, तो अन्य कोई सुख का क्या कहना, वैकुंठ का सुख का क्या कहना। ऐसा है तो फिर अन्य जो ब्रह्म ज्योति से उत्पन्न हुआ जो सुख है, या भौतिक जगत से उत्पन्न हुआ सुख है, उसका क्या कहना। हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं, हमेशा ये जो स्वरूप है ये स्वरूप मेरे मन में मनसांतरेण मन में हमेशा रहे, और उस स्वरूप में ये जो माधुरी में जो स्वरूप है इसका मैं हमेशा मन में रखूं, उसे ही मैं आनंद को अनुभव करूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी अपने दूसरे श्लोक में प्रार्थना करते हैं। देखिए जन्माष्टमी देवता लोग कहते हैं, जब भगवान का प्राकट्य होने वाला है उस समय देवता लोग कहते हैं, आपके प्राकट्य के पीछे अनेकों अनेकों कारण हो सकता है, लेकिन अनेकों कारणों में एक कारण है भगवान, सुनिए। आप सारा जगत को दिखाना चाहते हो कि मेरा एक स्वरूप है, आई हैव फॉर्म, और कैसा स्वरूप है ये आपका जो स्वरूप है, उस स्वरूप में प्रकट होकर दिखा के कहते हो मेरा पूजा करो, मेरा स्मरण करो, और अनेकों अनेकों प्रकार के जो भ्रांतिकर जो सिद्धांत है जो कहता है आपका कोई शरीर नहीं, आपका स्वरूप नहीं, आप निराकार हो, उन सारे जितने भी भ्रांतिकर स्वरूप जो है उसको आप नाश कर देते हो, उसको परास्त कर देते हो। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा इन अर्च विग्रह का सेवा करना, स्थित में अर्च अवतार, ये भी अवतार है भगवान का। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक भक्ति पूछा, भगवान का अवतार जो है प्राकट्य हुए 5,000 साल पूर्व, अभी क्यों नहीं हो रहा है? प्रभुपाद ने कहा अभी भी हो रहा है। भक्त एकदम घबरा गया, अभी कहां हुआ बताइए। प्रभुपाद ने कहा जब भी मैं मंदिर खोलता हूं नया भगवान का अवतार होता है, जय में मंदिर खोल रहा भगवान का अवतार। कौन सा अवतार है भैया? अर्चा अवतार। तो जैसे देवताओं ने कहा भगवान आप प्रकट होते हो सारे लोगों के मन में ये जो भ्रांतिकर भावना को दूर करने के लिए, उसी प्रकार भगवान की अर्च वगैरह के रूप में जो प्रकट होते हैं उस समय क्या करते हैं, किसके लिए प्रकट होते हैं? ताकि हमारे मन में जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए प्रकट होते हैं। ये जन्माष्टमी हमारे लिए विशेष है, क्योंकि अभी इस जन्माष्टमी तुरंत बाद ही हमारे नव मंदिर में भगवान का प्राकट्य होने वाला है, भगवान का प्रकट होना है। जो सौभाग्य यशोदा को मिला, जो सौभाग्य देवकी को प्राप्त हुआ, उसी सौभाग्य उसी प्रकार का सौभाग्य हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के शरीर में अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बात यह है कि मद अनुग्रह से, जैसे शब्द में ब्रह्मा जी ने कहा आपकी अनुग्रह से भरा हुआ, कृपा से भरा हुआ आपका शरीर है, तो ब्रह्मा जी के सामने साक्षात भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप में खड़े थे। केवल उस समय लीला में भाग लेने वाले भक्ति उसको दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन भगवान की अर्च विग्रह का स्वरूप इतना और अनुग्रह है, इतना अनुग्रह है, इतने कृपालु है स्वरूप की, जिसका योग्यता भी नहीं है, बद्ध अवस्था में है, वैसे लोग भी दर्शन कर सकते हैं अर्च विग्रह का स्वरूप। इसलिए अर्च विग्रह का स्वरूप को सबसे ज्यादा दयालु माना गया है, यह अर्च विग्रह का स्वरूप का विशेषता है। बद्ध अवस्था के जो में जो भक्त हैं उन भक्तों के द्वारा भी सेवा स्वीकार करते हैं, उनको भी दर्शन देते हैं, उनके साथ भी आदान प्रदान करते हैं। इसी अर्थ विग्रह का स्वरूप जो है भगवान का स्वरूपों में सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्यों? सबसे दयालु है। तभी हमारे लिए सबसे परम मौका है कि हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, रोज भागवत सुनने की सौभाग्य प्राप्त हुआ, रोज भागवत सुन के रोज जन्माष्टमी मनाने की सौभाग्य प्राप्त हुआ, और खास करके नया मंदिर में भगवान का प्राकट्य अर्थ विग्रह के रूप में प्राकट्य का दर्शन करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सबसे निवेदन, जन्माष्टमी के दिन हमारे हृदय में दीनता की भावना को अनुभव करते हुए, जैसे ब्रह्मा जी अपनी दीनता को भावना को अनुभव कर रहे, मैं कौन हूं, मैं तुच्छ हूं, जैसे दीनता हृदय में प्रकट होती है, प्रेम प्रकट होती है, उस प्रेम से भरा हुआ इन श्लोकों को ब्रह्मा जी उच्चारण कर रहे हैं। हमने अभी दो श्लोकों को चर्चा किया, बाकी अन्य श्लोक है उसको हम 3 बजे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। 3 बजे से 5 बजे तक कुछ और श्लोक है, ब्रह्मा जी की दीनता को वर्णन करने वाला श्लोक है, उनको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे 3 बजे और अभी 10 बजा है, 11 बजे शुद्ध से गुरु के द्वारा प्रवचन होगा, उसमें भी आप बैठ के सुन सकते हैं। हरे कृष्ण।